So, we are going to chant text 81.
तो हम अब 81वें श्लोक का उच्चारण करेंगे.
So this is Chaitanya Charitamrita, but this shloka is in Sanskrit. It is not in Bengali.
ये चैतन्य चरितामृत की कक्षा है, किंतु यह श्लोक संस्कृत में है, बंगाली में नहीं.
So the meter is Sanskrit instead of the Bengali meter. You know the difference? How many of you know the difference between Bengali and the Sanskrit meter?
आप में से कितने भक्त बंगाली और संस्कृत मीटर में फर्क जानते हैं?
Good, very good. I don't expect the brand new devotees, the brand new yellow boys to know, but I see that most of the yellow boys that have been around longer, they know. So this is good. Good.
Maharaj बता रहे हैं कि उनको अपेक्षा नहीं थी कि जो नए भक्त हैं, जो पीले वस्त्रों में हैं, उन्हें भी ये फर्क पता होगा. लेकिन काफी भक्तों को पता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है.
तासम अवीर भक्त छोरी
तासम अवीर भक्त छोरी
स्मयमाना मुखाम्बुजा
स्मयमाना मुखाम्बुजा
पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षन्मन्मथ मन्मथ. ट्रांसलेशन.
अनुवाद. गोपियों की विरह भावनाओं के कारण कृष्ण पीताम्बर पहने फूलों की माला धारण किए एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गए. उनका कमल मुख मुस्कुरा रहा था और वे कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले थे.
I'll read the English also. Suddenly, due to their feelings of separation, Lord Krishna appeared among the gopis dressed in yellow garments and wearing a flower garland. His lotus face was smiling and he was directly attracting the mind of Cupid. So before we go any further, let us recite the Guru Parampara.
Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyati Deshitarine Om Ajnana Timrandhasya Jnananjana Shalakaya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं संसजीवम् साद्वैतं सावित्रं
परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपरं सकलमरिदा श्रीभजगानुतांश्च हे कृष्ण करुण सिन्धु दण्डुजगत्पते गोपेश
गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानंसिते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सन्निधेयो च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे.
So once again we are studying the Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, the conversation between Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy.
हम यहाँ पुनः चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहे हैं जिसमें श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय जी के बीच में वार्तालाप हो रही है.
दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट चैप्टर्स इन चैतन्य चरितामृत इफ नॉट द हाईएस्ट.
यह एक सबसे उच्चतम जो अध्याय है उनमें से ये एक है. यह सबसे उच्चतम नहीं है लेकिन उनमें से एक है.
Because the subject matter is rasa tattva.
क्योंकि जो विषय तत्व है वह रास तत्व है.
The rasa of the residence of Braj with Lord Shri Krishna.
ब्रजवासियों का भगवान श्री कृष्ण के साथ में जो रास है वह यहाँ पे चर्चा की जा रही है.
So to give some context to today's verse, I'm going to back up a bit.
तो भूमिका के लिए महाराज बताएंगे अभी.
The way this conversation is going between Ramananda Roy and Sri Chaitanya Mahaprabhu is that he started with Varnashram Dharma as the goal of life.
यह जो चर्चा प्रारंभ हुई थी यह चर्चा प्रारंभ हुई थी कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय ने बताया कि जो जीवन का परम लक्ष्य है वह वर्णाश्रम है.
But then Sri Chaitanya Mahaprabhu rejected actually.
और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको तिरस्कृत कर दिया.
He said this is mundane.
उन्होंने कहा यह एक भौतिक चीज है.
You gotta do better than this.
आपको इससे कुछ अच्छा बताना होगा.
Then he, Ramananda Roy went all the way to Sarvadharma Paricharyam Manigam Saramandra Braja. Give up all varieties of religion, surrender to me. The heaviest shloka in Bhagavad Gita, Ramananda Roy repeated it to Mahaprabhu.
तो रामानंद राय ने भगवद गीता का सबसे उच्च जो सबसे भारी श्लोक था वो भी पुनः दोहराया.
The essence of Bhagavad Gita is in that shloka, one shloka.
यह इस श्लोक में भगवद गीता का पूरा सार है.
महाप्रभु वॉज नॉट एंथूज्ड.
महाप्रभु जी को चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल भी उत्साह नहीं आया उससे.
What is this? The most heaviest shloka in the whole Bhagavad Gita. Mahaprabhu is not enthused. What is this?
तो महाप्रभु यह क्या हो रहा है? महाप्रभु को भगवद गीता के सबसे जो उच्च श्लोक है उससे भी उत्साह नहीं आ रहा है.
And Ramananda Roy recites other shlokas from Bhagavad Gita. Still, he's not capturing the interest or the heart of Mahaprabhu, even though he's quoting Bhagavad Gita, the words of Lord Sri Krishna.
हालांकि रामानंद राय जी भगवद गीता श्री भगवान कृष्ण की वाणी को उद्धृत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वे चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय को नहीं आकर्षित कर पा रहे हैं.
So Mahaprabhu keeps telling him, "Tell me more. You know, you've got to tell me more. You know, you're warming up, but you're really not there yet. Come on, give me more."
तो महाप्रभु रामानंद राय जी वो कहते हैं हाँ आप थोड़ा ऊंचा उच्च तो बोल रहे हैं लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा कुछ चाहिए.
So we'll start with text 77.
तो हम पुनः दोहराने के लिए 77वें श्लोक से देखेंगे.
Ramananda Roy continued, "O Brahmana, what pious activities did Nanda Maharaj perform by which he received the supreme personality of Godhead as his son? And what pious activities did Mother Yashoda perform that made the absolute supreme personality of Godhead call her mother and suck her breast?" So he's becoming more intimate now. You see, now from Sarvadharma Paricharyam, you know, which Mahaprabhu was dismissing as external. Now Ramananda Roy is entering into rasa of braj. So he keeps upping it, you know, like a jack, you know, a bumper jack on a, like a, you know, the car races up, you know. This is what Ramananda Roy is doing on the order of Mahaprabhu.
तो महाप्रभु के आदेश पे रामानंद राय और उच्च उच्च चर्चा करते रहते हैं, उच्च रस की चर्चा करते हैं. जैसे कि वो बताते हैं यहाँ पे कि माता यशोदा और नंद महाराज ने कौन से पुण्य कर्म किए थे कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए.
So this is getting pretty intimate because Ramananda Roy is saying, "What pious activities did Mother Yashoda do for the Supreme Personality of Godhead to call her mother and suck her breasts?" So obviously, this is getting into braj intimacy now. You know, so this is it's not ABCs.
तो यह जो रामानंद राय जी जो ज्ञान दे रहे हैं कि यशोदा माता ने कौन से पुण्य कर्म किए थे कि उन्हें भगवान को अपना स्तनपान कराने की सेवा मिली, तो यह रामानंद राय जी उच्च और उच्च ज्ञान दिए जा रहे हैं, ऊंचे रस की चर्चा कर रहे हैं.
Now listen carefully to the next shloka, number 78.
अब ध्यानपूर्वक आप 78वें श्लोक को सुनिए.
The favored mother Yashoda obtained from Sri Krishna, the bestower of liberation, was never obtained even by Lord Brahma or Lord Shiva.
तो यहाँ पर इस श्लोक में बताया कि मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को जो कृपा प्रसाद मिला वह न तो कभी ब्रह्मा जी को प्राप्त हो सका है और न कभी शिव जी को.
इसे
लिख लीजिए.
Because this is
only way you can understand the position of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is by hearing such a shloka that here that is spoken from Srimad Bhagavatam, and yet by hearing this properly we can understand Prabhupada's position. You try to get this point, because I'm going to read it again, that you're going to get Prabhupada's position if you hear the deep purport of this shloka. Then only can you understand Prabhupada. Otherwise you'll never understand Prabhupada. You can develop love for him, but you'll never understand him.
तो इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ने समझने से ही आप प्रभुपाद शील प्रभुपाद जी की स्थिति को समझ पाएंगे, वरना आप नहीं समझ सकते.
I'll read it again. The favor Mother Yashoda obtained from Sri Krishna, in other words, feeding baby Krishna with her breast, and Lord Krishna was the bestower of liberation, which is chased after by all the yogis.
So, भगवान श्री कृष्ण जो कि योगियों द्वारा जिनको योगी जिनका पीछा करते हैं वो मुक्ति प्रदान करने वाले श्री कृष्ण से माता यशोदा को कृपा प्रसाद मिला.
Now listen again, because I really want you to download it.
अब इसे ध्यानपूर्वक सुनिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे अच्छे से उतार लें.
You listening, friend? Good. It's in your name, you know.
क्या नाम प्रेम प्रभु आप सुन रहे हैं?
So such a position like Mother Yashoda was never obtained even by Lord Brahma or Lord Shiva.
यह स्थिति ब्रह्मा जी को भी और शिव जी को भी नहीं मिली थी.
What about Prabhupada?
Prabhupada ji ke bare mein.
Srila Prabhupada, you got to understand, His Divine Grace Jagat Guru A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada is in the same league as Mother Yashoda and Nanda Maharaj did it straight.
जिस तरह से नंद महाराज और माता यशोदा को सीधे रूप से भगवान की कृपा मिल रही है उसी तरह से प्रभुपाद की भी स्थिति है.
He is in the same league as the coward boys.
श्रील प्रभुपाद जी जो व्रज गोप कुमार हैं उन गोप हैं व्रज गोपगण हैं उनकी तरह ही प्रभुपाद भी उसी लाइन में हैं.
The gopis and the manjaris, Prabhupada is in that league.
प्रभुपाद जिस तरह से गोपियां और मंजरियां हैं उसी तरह से तो उसी तरह से हमारा जो गुरु परंपरा है वो पूरी की पूरी उसी गोपियां और मंजरियों की स्थिति
में. 12-year-old girls who are the exclusive maid servants of Radhika, that is Manjaris. Most of our acharyas they are Manjaris.
हमारे बहुत सारे आचार्य ज्यादातर आचार्य गोपियों के लिए सेवा करने वाली मंजरियां हैं जो कि 12 वर्ष की युवतियां हैं और वो राधा रानी जी की सेवा करती हैं.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he was Manjari. Srila Bhaktivinoda Thakur, he was Manjari.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, वो भी एक मंजरी हैं. Srila Bhaktivinoda Thakur, वे भी एक मंजरी हैं.
Sat Goswami, they are Manjari.
छह गोस्वामी वे भी मंजरी हैं.
Narayan Chand Das Thakur, Srinivas Acharya, all big, big saints, they are Manjari.
Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, जितने भी बड़े बड़े आचार्य ऋषि गण हैं आचार्य हैं वे सभी मंजरियां हैं.
That is the league that Srila Prabhupada is in.
उसी परंपरा में श्रील प्रभुपाद भी हैं.
So, keeping that in mind, so Ramananda Roy is quoting from the 10th canto of the Bhagavatam.
तो इसे ध्यान रखते हुए यहाँ पे रामानंद राय जी 10वें स्कंद से उद्धृत कर रहे हैं श्लोक.
But that such a position was never obtained even by Lord Brahma or Lord Shiva, this statement applies to Srila Prabhupada as well. This is the only way you understand the position of Prabhupada.
यह स्थिति ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त हुई शिव जी को भी नहीं प्राप्त हुई तो इस कथन से हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद की स्थिति कितनी ऊंची है.
The next statement by from the Srimad Bhagavatam is by these are statements from the 10th canto by Shukadeva Goswami.
तो यहाँ पे जो श्लोक हैं ये शुकदेव गोस्वामी जी ने कहे हैं.
The next thing Shukadeva Goswami says is such intimacy is not
available even by the to the goddess of fortune.
तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह जो अंतरंग सेवा है यह श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुई है.
She is attracted by Braj.
ये श्री लक्ष्मी जी ये ब्रज से आकर्षित हैं.
She knows all about Braj.
वे ब्रज के बारे में सब कुछ जानती हैं.
She is right to enter into Rasalila, you know.
उन्होंने रासलीला में भी प्रवेश करने का प्रयास किया था.
She couldn't do it.
बट वे नहीं जा सकी अंदर.
She had a sufficient mystic power. She could have, you know, she could have given herself a gopi body.
तो उनमें इतनी योगिक शक्ति थी कि वे अपने आप को गोपी बना सकती थी.
That's not enough. Putting on a gopi costume is not enough to enter that league. You can't just put on a costume. It doesn't work.
तो ऐसा नहीं है कि आप गोपी का पहनावा पहन लें और उस रासलीला में अंदर प्रवेश कर जाएं. ऐसा संभव ही नहीं है.
Lord Shiva wanted to enter into Rasalila.
भगवान शिव जी वे भी रासलीला में प्रवेश करना चाहते थे.
So he put himself by his mystic power into a gopi body.
तो उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से अपने आप को गोपी बना लिया.
Very beautiful silk saris, bangles, you know, lotus eyes, everything perfect, you know.
तो उन्होंने चूड़ियां पहन ली बहुत सुंदर और सिल्क की साड़ी पहनी और बहुत ही सुंदर अपनी आंखों को बना लिया कमल की तरह.
Tinkling ankle bells.
और झनकार करती हुई पायलें.
Makeup, gopi dots, everything, you know. So he was like perfect, looking like a perfect gopi.
तो गोपी चिन्ह उन्होंने आंखों पे लगा लिए और इस तरह से वे बहुत ही अच्छे तरीके से गोपी के वेश में थी.
Then he entered into the rasa.
और फिर उन्होंने रासलीला में प्रवेश किया.
The gopis took one look at him.
तो बाकी गोपियों ने उनकी ओर देखा.
These so-called simple village girls.
उन्होंने देखा कि ये बहुत ही साधारण सी गांव की युवती हैं.
They said, welcome.
उन्होंने उनका स्वागत किया.
But who are you?
फिर उन्होंने पूछा कि आप हैं कौन?
We don't know you.
हम आपको नहीं जानती.
He wasn't ready for this. He wasn't expecting these simple village girls to like grill him, you know, grilling, you know, like interrogate him, you know. He wasn't expecting these so-called simple village girls to interrogate him, but immediately they detected, wait a minute, who are you?
तो शिवजी ये अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि उनसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन गोपियों ने उसी वक्त उन्हें भाप लिया कि ये कोई और स्त्री है, कोई और युवती.
Maybe he had a name. He probably had a name ready. You know, he was that clever. I mean, he had a name ready, most likely.
तो यह संभव है कि उन्होंने शिवजी ने कुछ न कुछ अपना नाम रखा होगा.
That didn't do it.
लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं.
The gopis could see through that.
लेकिन गोपियों ने बाकी गोपियों ने देख लिया कि ये झूठ बोल रही हैं.
They said, "Who is your mother? Who is your father?"
फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि आपकी माता कौन है.
He was busted.
तो शिवजी वहां पे उनका पोल खुल गई.
What village do you come from?
उन्होंने पूछा आप कौन से गांव से हैं.
He was checkmate. He was finished.
तो वहां उनकी हार हो गई.
These so-called simple village girls completely outsmarted the almighty Bhagavan Lord Shiva. They completely outsmarted him with his super brain. So-called simple village girls completely defeated him.
हालांकि शिवजी में बहुत ही तेज दिमाग है, लेकिन यहाँ पे एक साधारण गांव की स्त्रियों ने उन्हें पराजित कर दिया, उनकी पोल खोल दी.
Then they said, "You're an imposter." You know what imposter means? Pretend. You're fake. You're a fake.
तो फिर उन गोपियों ने शिवजी से कहा कि आप झूठ बोल रही हैं, आप दिखावा कर रही हैं.
Get out of here. They kicked him out. Get out of here.
तो उन्होंने गोपियों ने रासलीला से उन्हें निकाल दिया. चले जाओ यहाँ से.
So-called simple village girls. They're actually genius, you know.
वो so-called गांव की स्त्रियां जो थी तथाकथित उन्होंने उन्हें निकाल दिया वहां.
Do you know that the gopis, you know so much about the Vedas, they recite Vedic shlokas all the time.
तो गोपियां वैदिक भी जानती हैं और वे हर वक्त उनका उच्चारण करती रहती हैं.
Especially Ashtasakis are very good with the Vedas.
विशेष रूप से जो अष्ट सखियां हैं वे वेदों में बहुत निपुण हैं.
You know that they're so good with the Vedas, these so-called simple village girls, that they can philosophically defeat Krishna. Do you know that?
तो वे गोपियां जो गांव की युवतियां हैं वे इतनी निपुण हैं वेदों में कि वे भगवान श्री कृष्ण को भी सिद्धांत में पराजित कर देती हैं.
When they say, "We're just simple village girls," don't believe it.
जब वे गांव की स्त्रियां ये कहें कि हम साधारण गांव की स्त्रियां हैं तो उन पर विश्वास मत कीजिए.
So, even the goddess of fortune, she cannot enjoy this level of intimacy because she couldn't give up her Aishwarya Bhav. Aishwarya Bhav means the formality of Vaikuntha. She couldn't give it up. She was attached to the grandeur of Vaikuntha. She couldn't give it up. Whereas their simplicity in Vrindavan, although there's opulence also.
So, Lakshmi Ji ko bhi antarang seva nahi prapt hui. Aur kyun nahi prapt hui? Kyunki ve apna Aishwarya Bhav nahi tyag saki. वो जो साधारण गांव की स्त्री का जो चेतना है वो नहीं धारण कर सके. जो वैकुंठ की ऐश्वर्य है वे उसे नहीं छोड़ रहे थे.
In verse 79, Mahaprabhu said, "Your statements are certainly getting better and better one after another, but surpassing all of them is another transcendental mellow, and you can speak of that as the most sublime."
तो फिर 89 श्लोक में महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे कथन उत्तरोत्तर अच्छे होते जा रहे हैं, किंतु इन सबसे बढ़कर अन्य दिव्य रस है जिसे आप अच्छी तरह बतला सकते हैं.
Then finally, Ramananda Roy starts getting to the point. What Mahaprabhu wants to hear.
फिर रामानंद राय जी मुख्य बिंदु पर आते हैं जो कि चैतन्य महाप्रभु सुनना चाहते हैं.
He says, then Ramananda Roy said, "Conjugal attachment for Krishna is the topmost position on love of Godhead."
फिर रामानंद राय ने उत्तर दिया कि भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है.
So he's been climbing the ladder all the way from Varnashram Dharma. Now he's been climbing the ladder step by step, and finally Mahaprabhu was not at all satisfied.
तो यहाँ पे हम देखते हैं रामानंद राय जी धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और इनसे चैतन्य महाप्रभु लेकिन संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने वर्णाश्रम से शुरुआत की थी.
So this conversation, climbing the ladder of step by step of the progression towards Madhurya Bhav, this conversation has been going on since text number 57.
तो यह जो वार्तालाप है ये 57वें इस अध्याय के 57वें श्लोक से शुरू हुआ था और रामानंद राय जी एक एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं.
Who is quick with mathematics? What's 81 take away 57?
कौन जल्दी से बता सकते हैं कि 81 में से 57 को घटाएं तो कितने श्लोक हो जाएंगे?
24 shlokas now. The Ramananda Roy started back on verse, because Mahaprabhu ordered him in verse number 58. Mahaprabhu ordered him, "Recite a verse from the revealed scriptures concerning the ultimate goal of life." That's how this whole conversation started.
यह जो वार्तालाप है यह शुरू हुआ था 57वें श्लोक से जहां चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आदेश दिया कि जीवन के चरम लक्ष्य से संबंधित शास्त्रों से एक श्लोक सुनाएं.
And that's when Ramananda Roy replied, "If one executes the prescribed duties of his social position, that means Varnashram Dharma, he awakens his original Krishna consciousness." That's where Ramananda Roy started with his answers.
रामानंद राय ने जो शुरुआत में उत्तर दिया था जहां से उन्होंने शुरुआत की, यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वह अपनी मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करता है.
Now, 23 verses later, Ramananda Roy has finally, he's been climbing the ladder because Mahaprabhu's been saying, "No, no, that's not good enough. Even Sarvadharma Pratyajam Manikam Saranam Bajar, Mahaprabhu was rejecting such a high verse.
तो इस श्लोक से 23 श्लोक पीछे रामानंद राय जी ने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया था और इसके बीच में जो सर्वधर्मान परित्यज श्लोक भी उन्होंने उद्धृत किया उसे भी चैतन्य महाप्रभु जी ने तिरस्कृत कर दिया कि इससे कुछ और ऊंचा बताइए.
So finally, then in verse number 80, Ramananda Roy is getting into the intimacies of Braj. This is what Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear, the intimacies of Braj.
So, यहाँ पे 80वें श्लोक में रामानंद राय जी जो अंतरंग.
So he begins quoting from the 10th canto of the Srimad Bhagavatam.
तो जो अंतरंग रस है उसकी चर्चा करने लगते हैं रामानंद राय जी और 10वें स्कंद से यहाँ पे श्लोक उद्धृत करते हैं माधुर रस के द्वारा.
He quotes from the conversation what Uddhava. When Krishna sent Uddhava to Vrindavan to try to pacify the gopis, and Uddhava was speaking to the gopis, and so from this such high position, 10th canto, Ramananda Roy begins quoting these shlokas, you see.
Ramananda Roy ji, yahan Bhagavatam se jo shloka uddhat kar rahe hain, vah Uddhav ji ne us samay kaha tha jab ve Krishna ka sandesh lekar gopiyon ke paas Shri Vrindavan gaye the. और जो दो गोपियों की गतिविधियां बताते हैं तो यही श्लोक रामानंद राय जी ने यहाँ पर उद्धृत किया.
So the 80th verse is, when Lord Sri Krishna was dancing with the gopis in the Rasa Lila, the gopis were embraced around the neck by the Lord's arms. By the way, does that sound like ABCs to you?
तो यहाँ पे रामानंद राय जी जो श्लोक बता रहे हैं वह इस प्रकार है. जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी. तो क्या यह आपको बहुत प्राथमिक ज्ञान लगता है, एबीसी लगता है?
You added about ABCs. You added about ABCs.
Yes, Maharaj.
Yeah. They're bracing the Lord around the neck. They're embracing his arms. And this transcendental favor was never bestowed upon the goddess of fortune.
और यह जो दिव्य संयोग है यह कभी लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ था कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का इस तरह से आलिंगन किया.
So she doesn't get that kind of intimacy with Lord Narayan, you see. That's why she wanted to go to Braj. She can see what's going on in Braj. She wanted to go there and get a taste of that ras, but she couldn't do it, you see.
तो ऐसी अंतरंगता लक्ष्मी जी को नारायण भगवान नारायण के साथ भी नहीं प्राप्त होती है, इसलिए वे ब्रज में जाना चाहती हैं और यह अंतरंगता और यह रस भोगना चाहती हैं.
So this was never bestowed upon the goddess of fortune, such, you know, hugging and intimacy with Krishna, in other words.
तो यह आलिंगन का सुख लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुआ.
Or the other consorts in the spiritual world.
और न ही वैकुंठ की अन्य प्रेयसियों को.
That means वैकुंठ धाम.
मतलब कि वैकुंठ धाम में भी यह सुख नहीं है.
But it might also include द्वारका, you see.
तो हो सकता है यह द्वारका को भी शामिल करता हो.
But on all fairness, Rukmini has an intimate relationship with Krishna.
लेकिन हाँ, रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण के साथ अंतरंग संबंध है.
108,000 wives. They have some intimacy with Krishna, more than the goddess of fortune.
तो जो लक्ष्मी जी हैं, उनसे भी ज़्यादा अंतरंगता उन 16,108 रानियों को है.
But Uddhava is saying that these residents of Braj have intimacy that is beyond all other consorts. You know, consorts means intimate associates of the Lord in the spiritual world.
तो यहाँ पे उद्धव जी बता रहे हैं कि ऐसी अंतरंगता जो भगवान के जो सहकर हैं उनको भी ऐसी अंतरंगता नहीं प्राप्त होती है.
We're still on in the middle of verse 80.
हम अभी भी 80 श्लोक की ही मध्य में हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं.
Nor was such a thing ever imagined by the most beautiful girls in the heavenly planets.
न ही स्वर्ग लोक की उन श्रेष्ठ सुंदरियों ने कभी ऐसी कल्पना की थी.
Girls whose bodily luster and aroma resemble the beauty and the fragrance of lotus flowers.
तो जिनकी शारीरिक कांति तथा सुगंधि कमल के फूल की जैसी है.
Lotus flowers used to be fragrant, you know.
तो कमल बहुत ही सुगंधित फूल है.
Unfortunately now, and Delhi Kali Yuga lotus flowers don't have scent anymore.
लेकिन कलयुग के प्रभाव से दिल्ली में जो कमल हैं, जो कमल आते हैं, उनमें कोई भी सुगंध नहीं होती है.
Then he continues, Uddhava continues, and what you speak of worldly women who may be very, very beautiful according to material estimation.
तो फिर आगे उद्धव जी बता रहे हैं, तो भला उन सांसारिक स्त्रियों की तो बात ही क्या, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर हैं.
So that's the context of verse 81.
तो यह 81वें श्लोक के लिए भूमिका थी.
Or Ramananda Roy continues in verse 81 describing the intimacies of Braj. And this is what Mahaprabhu wants to hear. He doesn't want to hear anything less.
तो यहाँ पे रामानंद राय जी व्रज की जो अंतरंगता है उसकी चर्चा कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु यही सुनना चाहते हैं, इससे कम कुछ भी नहीं.
So again, text 81. Suddenly, due to their feelings of separation, Lord Krishna appeared among the gopis dressed in yellow garments and wearing a flower garland. His lotus face was smiling and he was directly attracting the mind of Cupid.
तो 81वें श्लोक में रामानंद राय जी कहते हैं, गोपियों की विरह भावनाओं के कारण कृष्ण पीताम्बर पहने फूलों की माला धारण किए एकाएक उनके बीच में प्रकट हो गए. उनका कमल मुख मुस्कुरा रहा था और वे कामदेव के मन को भी आकृष्ट करने वाले थे.
So in the purport, Srila Prabhupada points out that this is a verse from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, 32nd chapter, text number 2.
तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 32वें अध्याय का दूसरा श्लोक है.
So Srila Prabhupada summarizes that when the rasa dance was going on, Krishna suddenly disappeared.
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण रास नृत्य के बीच से ही अंतर्ध्यान हो गए थे.
And the gopis became so overwhelmed due to the separation.
और गोपियां उनके विरह में उनके प्रति आगाढ़ प्रेम के कारण विवल हो उठी.
एंड देयर इंटेंस लव फॉर हिम,
उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण.
दिस इज कॉल्ड विप्रलंबर, इंटेंस सेपरेशन.
तो यही जो प्रगाढ़ प्रेम है, जो यही विप्रलंब भाव कहलाता है.
सो देयर लव वाज सो पावरफुल नेक्स्ट दैट प्रॉपर्स coming, the Krishna was obliged to appear again because their love was drawing him like a super powerful magnet, you know.
तो उनका जो विरह में जो प्रेम था वह इतना प्रगाढ़ था कि वह भगवान श्री कृष्ण को जैसे चुंबक आकर्षित करता है उस तरह से अपनी ओर खींच रहा था.
So this is what's called the summum bonum. The summum bonum is a term that was used by Srila Prabhupada frequently.
तो यह कहलाता है समम बोनम, जो कि श्रील प्रभुपाद जी ने काफी बार यूज काफी बार प्रयोग किया है इस शब्द का.
इट्स नॉट संस्कृत, इट्स नॉट इंग्लिश. समम बोनम,
समम बोनम यह ना तो संस्कृत है और ना ही हिंदी.
समम बोनम इज लैटिन.
समम बोनम जो है वह एक लैटिन शब्द है.
द वर्ड समम, द वर्ड इंग्लिश वर्ड सम comes from sumam, you see.
तो अंग्रेजी भाषा में जो शब्द सम है वह सुमम से आता है.
So summum bonum means the ultimate top summary.
तो जो summum bonum है उसका अर्थ है कि सबसे जो उच्चतर सारांश है वह.
So now Mahaprabhu has forced Ramananda Roy to speak of the summum bonum, the essence, the highest essence of Krishna consciousness in Ras.
तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय जी को मजबूर कर दिया कि वे सबसे उच्चतम जो सार है वह दे सके रास.
So that's where we're headed.
तो हम यहाँ पर पहुँच गए.
You want to understand Srila Prabhupada, you have to understand that he is passing out these passes to enter Braj in these kind of ras and varieties of the highest Ras that Srila Prabhupada is passing out these high power security passes. He's passing them out like popcorn. You know, sometimes somebody might be in a good mood and pass out free popcorn to a bunch of people with lots of nice butter and all that, you know.
यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से व्रज का जो राज है उससे गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं
Because we've described several times, but how many of you have heard my comparison of Goloka Vrindavan to an exclusive club?
तो आप महाराज बता रहे हैं कि महाराज ने कई बार वर्णन किया है तो आप में से कितने भक्त जानते हैं कि गोलोक वृंदावन और एक क्लब में क्या फर्क है जिन्होंने सुना है महाराज को
ओके दैट्स गुड बिकॉज आई रिलिश डिस्कसिंग दिस सब्जेक्ट
तो महाराज कह रहे हैं अच्छा आप लोगों ने नहीं सुना है मुझे ये बहुत ही पसंद आता है कि मैं इस विषय पर चर्चा करूं
दिस इज परम दृष्टि निवर्तते
यह परम दृष्टि निवर्तते है
yes. The higher taste is to relish this Harikatha.
So, yeah, उच्च जो रस है हरिकथा को आनंद लेना.
Those of you that are brahmachari and aspiring, that's like yellow boys, white boys, everybody, anybody who's aspiring for becoming brahmachari, you must develop param dṛṣṭi nivartate, the higher taste, and that higher taste is Harikatha.
तो आप में से जो ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी बनने के लिए ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उन्हें यह परम दृष्टि निवर्तते का प्रयास करना चाहिए परम दृष्टि निवर्तते अर्थात कि जो उच्च रस है उसे आनंद लेना वह हरि कथा और कीर्तन भी
That's also हरि कथा
कीर्तन भी हरि कथा है
But sorry, eating Krishna prasad is not enough to keep you brahmachari. Because all brahmacharis around the world eat Krishna prasad. And most of them get mahaprasad sooner or later. Still, so many are unable to stay in brahmachari ashram. So eating mahaprasad is not enough. It requires intensive hari katha.
So, brahmachari ashram mein rehne ke liye maaf kijiyega ki brahmachari ashram mein रहने के लिए यह नहीं है कि हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद से ही हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं हालांकि हमें महाप्रसाद भी मिलता है किंतु वह पर्याप्त नहीं है ब्रह्मचारी बने रहने के लिए यह जरूरी है कि हम बहुत ही प्रगाढ़ रूप से हरि कथा करें
सो हियर इन दिल्ली दिस इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया
तो दिल्ली जो कि एक राष्ट्रीय राजधानी है भारत की
सो डाउन इन द एम्बेसी एरिया देयर आर ऑलवेज एक्सक्लूसिव क्लब्स डाउन देयर Golf courses, you know.
तो जो एम्बेसी एरिया है एम्बेसी का जो क्षेत्र है यहाँ दिल्ली में वहाँ पे बहुत सारे गोल्फ क्लब हैं
Members of parliament can go there. There are gyms, you know, for working out. There's Olympic swimming pools. There's the golf course. And there's all other kinds of sense gratification available only to the top level VIPs down there, you see.
तो उस क्षेत्र में गोल्फ क्लब है स्विमिंग पूल है और वहां पे जो वीआईपीज हैं वे जाते हैं और सभी प्रकार की उच्च इंद्रिय तृप्ति के साधन वहां पर उपलब्ध हैं
And those who get into that place, you know, foreign heads of state and all that, they're issued a security pass, you know, a sweat card, you know. And so there's the electronic device and okay, paint, the green light comes on, you know.
तो वहां पे बहुत ही कड़ी सुरक्षा होती है तो वीआईपी लोगों के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं उसे वे वहां पे स्वैप करके अंदर जा सकते हैं
so, okay.
तो वहां पे जो गार्ड होते हैं जब वो कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को स्वैप करते हैं तो वो जाने देते हैं
गोलोक वृंदावन इज लाइक दैट ओनली हेवियर हेवियर
तो गोलोक वृंदावन जो है वह भी इसी तरीके से बहुत ही भारी है बहुत कठोर है
None of you, except maybe Murli, has probably, or Sham Krishna, you've probably read Brahma Samhita, huh?
So Sham Krishna Prabhuji, आपने जरूर Brahma Samhita पढ़ा होगा?
You read Brahma Samhita? Yes. Keshav Murli was here, but he disappeared. Mohan Gurchandra, you've read Brahma Samhita? partially. It's a tough book to read because of the English is very tough.
तो ब्रह्म संहिता महाराज पूछ रहे मोहन गौड़ चंद्रप्रभु जी आपने पढ़ी है तो वे कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने कुछ कुछ
But the Brahma Samhita explains that there are guards around the Loka Vrindavan and they have very, very sharp tridents.
तो ब्रह्म संहिता में बताया गया है उसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसकी जो अंग्रेजी है वह बहुत कठिन है और वहाँ बताया गया है कि जो गोलोक वृंदावन है वहाँ पे बहुत ही मजबूत सुरक्षा कर्मी है जिनके पास की त्रिशूल है
And even a big yogis like Durvasa Muni try to get in there to Goloka Vrindavan. These guards will come, whoosh, you know, with their tridents, no questions asked. No questions are asked.
तो अगर बड़े बड़े योगी जैसे दुरासा मुनि भी अगर गोलोक वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये सुरक्षाकर्मी वहां पे पहुंचते हैं और अपने त्रिशूल से उन्हें बांध लेते हैं और कुछ प्रश्न भी नहीं पूछते हैं
They just take their tridents, you're finished.
वे अपना त्रिशूल लेते हैं और उस आदमी का खात्मा कर देते हैं
इवन अ बिग शॉट लाइक दुरासा मुनि कुड नॉट विदस्टैंड द शार्प ब्लेड्स ऑफ द गार्ड्स ऑफ गोलोक
तो गोलोक के जो सुरक्षाकर्मी के जो त्रिशूल हैं वे बहुत तीखे हैं बहुत पहने हैं तो उसे दुर्वासा मुनि जैसे बड़े बड़े योगी भी नहीं पार कर सकते
Well, it's not quite that severe, the Delhi clubs, but still you can't get in.
हालांकि वे दिल्ली के जैसे क्लब्स के जैसे नहीं है लेकिन फिर भी आप वहां नहीं जा सकते
But you know, the well-known VIPs, they don't have to use a swipe card. They don't have to use a swipe card.
तो जो प्रसिद्ध जो बहुत ही प्रसिद्ध वीआईपीज हैं उन्हें स्वैप कार्ड भी नहीं यूज करना होता है यहाँ क्लब्स में प्रवेश के लिए
They are well known by the guards.
वे सुरक्षा कर्मियों द्वारा जाने हुए होते हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं
So it's just a wave and the big shot VIP goes walking through, no swipe card even.
तो जो बड़े जो वीआईपी होते हैं उन्हें कोई स्वैप कार्ड नहीं यूज करना होता वे साधारणतया ही निकल जाते हैं दरवाजे से
That's Srila Prabhupada.
यह स्थिति श्रील प्रभुपाद की है गोलोक वृंदावन के लिए
He doesn't need a swipe card to get in, go in and out of गोलोक वृंदावन
तो उन्हें कोई स्वैप कार्ड की आवश्यकता नहीं है कि वे गोलोक वृंदावन में आ जा सके
And lately he's been going in and out of गोलोक वृंदावन a lot.
और वे कई बार गोलोक वृंदावन के अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं
Because he's coming down here and picking up his disciples, so that means he's going back and forth.
तो वे गोलोक वृंदावन से इसलिए आ रहे हैं कि वे अपने शिष्यों को ले जाने के लिए बार बार आते और जाते हैं
And I've been meditating on this. I'm losing my god brothers and god sisters right and left, you know.
तो अभी मैं बहुत स्मरण कर रहा था कि मेरे जो गुरु भाई हैं और माता
वे सभी This is juicy, you know. So when Prabhupada re-enters Goloka Vrindavan, it's a wave. It's not a swift card. They know he's An eternal resident, Nityasiddha, they just wave as he enters Goloka Vrindavan or Dandabhat Pranams. They offer Dandabhat Pranams, you know, there's no question of having to use a sweat card.
So, जो Nityasiddha Parshad हैं भगवान के जैसे श्रील प्रभुपाद वे जब गोलोक में आते जाते हैं तो उन्हें कोई स्वैप कार्ड का प्रयोग नहीं करना होता वे खाली दंडवत उन्हें दंडवत प्रणाम किया जाता है और वे अंदर आ जा सकते हैं
Here's something interesting to think about.
लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही रुचिकर चीज है जो कि सोची जा सकती है
Bhagavad describes when Prithvi Maharaj left this planet, he went to Vaikuntha in a chariot.
तो भागवतम में बताया गया है कि जब पृथ्वी महाराज ने यह क्षेत्र छोड़ा यह भौतिक जगह छोड़ा तो उन्हें ले जाने के लिए एक रथ आया था वैकुंठ में ले जाने के लिए
When Dhruv Maharaj left this planet for Vaikuntha, he went in a chariot. This is in the Bhagavatam.
तो भागवत में बताया गया है कि जब ध्रुव महाराज यह ग्रह छोड़ते हैं तो उन्हें भी ले जाने के लिए एक विमान या चैरियट आता रथ आता है
Then he looked around and he thought, oh my poor mother. And he looked around and he saw there was another chariot behind him and that his mother Sumitra was there on the second chariot.
तो ध्रुव महाराज उस वक्त चिंतित होते हैं कि अरे मेरी माता तो रह गई तो देखते हैं कि उनके पीछे पीछे एक और विमान उनकी माता को लेकर जा रहा है वैकुंठ में
Now the interesting question is, how is Srila Prabhupada traveling back and forth between Goloka Vrindavan and Earth planet?
तो अब यहाँ पे यह रुचि का प्रश्न आता है कि किस तरह से प्रभुपाद गोलोक वृंदावन से इस भौतिक जगत में आते जाते हैं.
It could be by chariot.
और यह संभव है कि वह रथ ही हो या विमान हो जिसके द्वारा वे आते जाते
हैं. Shivaji Varadarani rides on a chariot. A chariot with 10,000 wheels.
श्रीमती राधारानी जी भी एक रथ पे आती हैं जिसमें 10,000 पहिए लगे हैं.
That's 10 stories tall.
जो कि 10 मंजिला ऊंचे हैं.
I mean, she doesn't mess around, you know.
तो इसका मतलब कि वे यहाँ भौतिक जगत से नहीं टच होते.
There's a number of possibilities. The Srila Prabhupada's coming on a chariot for Goloka Vrindavan and picking up his disciples and followers.
यहाँ पे कोई भी संशय नहीं है कि प्रभुपाद जो गोलोक वृंदावन है वहां से रथ में आते हैं और अपने शिष्यों को लेके जाते हैं.
Another possibility is he's coming on a swan plane.
और दूसरी संभावना है कि वे एक हंस पे आते हैं.
Or the third possibility is that he's coming like Narada Muni, just an eternal spaceman.
तो तीसरी संभावना यह भी है कि वे नारद मुनि की तरह जैसे शाश्वत रूप से वे आ जा सकते हैं कहीं वैसे ही प्रभुपाद भी आते हैं.
Take his disciple by the hand and pull him through all outer space and through Vaikuntha and everywhere just by the hand, and then take him by hand into Goloka. It could be any one of these three, we don't know. One day it will be revealed. Maybe somebody will get a revelation.
So, ये तीनों संभावनाएं हैं कि प्रभुपाद अपने शिष्य को हाथ से पकड़ करके और सारे भौतिक जगत को पार करते हुए वैकुंठ को पार करते हुए गोलोक वृंदावन ले जाते हूँ और जिसे ये साक्षात्कार होगा तो वो बता सकते हैं कि प्रभुपाद कैसा
है. That's the specialness of Brajadham. You know, that's who, try to understand, that is the league that Prabhupada's in, you know, nothing less.
तो हमें यहाँ पे ये समझना चाहिए कि व्रज की यह इतनी ऊंची स्थिति है और प्रभुपाद भी इसी लाइन में इसी परंपरा में है, इससे कम नहीं है.
And as we get older, you know, Prabhupada disciples, I mean, my body is 69 years old, and every year now we're losing 2 to 4, and I'm afraid during the next 10 years we're going to start losing as many 6 Prabhupada disciples per year, most likely.
तो अभी हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रभुपाद के शिष्य वृद्ध होते जा रहे हैं. महाराज अपनी आयु बता रहे हैं कि वे 69 साल के हैं. तो महाराज कह रहे हैं अभी हम प्रति वर्ष 2 से 3 प्रभुपाद शिष्य हम खो रहे हैं. तो हो सकता है आगे आने वाले 10 साल में 6 से ज्यादा प्रभुपाद शिष्य हम खोने लगे.
So whatever his means of transport is, whether it's swan plane or chariot or by taking the devotee by the hand, whichever one of those, it's one of those three, you know, one of those three.
तो जो भी संभावना हो कि इन तीनों में से कोई भी, कि प्रभुपाद या तो रथ पे भी आ सकते हैं या फिर हाथ से ही लेकर के जाएं या फिर वे हंस पर आए.
Srila Prabhupada is going to be very busy during the next 10 or 12 years, you know, bringing his devotees back to home, back to Godhead.
तो प्रभुपाद आने वाले 10 साल में बहुत ही ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे अपने शिष्यों को यहाँ से वापस भगवत धाम ले जाने के लिए.
And then he'll come and get you also if you become serious, if you remain serious in Krishna consciousness, he'll personally come and get you also.
अगर आप भी बहुत ही सावधान रहते हैं, बहुत ही सीरियस रहते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो प्रभुपाद आपको भी लेने आएंगे. हरि बोल.
Maybe he'll come on a chariot along with your Guru Maharaj, you know. Why not?
वे हो सकता है कि आपके गुरु महाराज के साथ में एक रथ पर आए.
And think it, okay, let's go.
ये कह सकते हैं कि ठीक है, ले लीजिए इनको भी.
Don't bother packing your bags.
चिंता मत कीजिएगा कि आप अपने बैग को पैक करने लगे.
Don't bring your backpack. You don't need it.
आप अपना बैग मत पैक कीजिएगा, आपको उसकी वहाँ जरूरत नहीं होगी.
Whatever you want, you know, or just come sit in a retreat in Goloka and desire tree. If there's something in your backpack that you think you might miss, you can get it from a dead desire tree. Don't worry about it. Let's go.
तो बैकपैक की चिंता मत कीजिएगा. आप सोचें कि हाँ ये इन चीजों की वहाँ जरूरत पड़ेगी. गोलोक वृंदावन में सभी वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, आपकी सभी आवश्यकताएं वहाँ पूरी हो जाएंगी.
So that's Srila Prabhupada.
तो यह श्रील प्रभुपाद की स्थिति है.
जग गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गणचरण श्री चैतन्य चरित की जय. शिशि गोयदा की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्र की जय. श्री श्री कृष्ण बलराम हरि कृपा की जय. निजय गो